हो रही है और ये सूरह तूर मक्किया है, मक्के में नाजिल हुई 1 से 16 तक। यानी सूरह तूर, तूर क्या नाम, क्या है, पहाड़ का नाम है, तूर पहाड़ का नाम है, और अल्लाह ताला इस नाम से एक सूरह रखे हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी 27वें पारे में। सूरह तूर मक्किया, मक्के में नाजिल हुई 1 से 16 तक। बहनों इसमें फरमाया, एक आयत नंबर 1 से 16 तक अल्लाह ताला ने बरोज़ क़यामत झुठलाने वालों का अज़ाब बताया। क्या है, कसम है तूर की और लिखी हुई किताब की जो झिल्ली के खुले हुए वर्क में लिखी है, और आबाद घर की कसम, ऊंची छत की कसम। बैत मामूर क्या है, काबेतुल्ला के ठीक ऊपर है वो बैत मामूर जो हमेशा आबाद रहता है, 70-70 हज़ार फरिश्ते उसमें तवाफ करते रहते हैं। अल्लाह ने उसकी कसम खाई और ऊंची छत की कसम खाई, भड़काए हुए समंदर की कसम खाई, बेशक भड़के हुए समंदर की कसम, बेशक आपके रब का अजाब होकर रहने वाला है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। जिस दिन आसमान थर थराने लगेगा और पहाड़ चलने लगेंगे, उस दिन झुठलाने वालों की खराबी होगी। जो अपनी बेहूदगी में उछल कूद कर रहे हैं दुनिया में, अपनी बेहूदगी में उछल कूद कर रहे हैं, उन पर ये वक्त आएगा जिस दिन धक्के दे देकर उन्हें जहन्नम की तरफ लाया जाएगा। अल्लाह अकबर। आगे बहनों अल्लाह ताला आयत नंबर 17 से 28 तक मुत्तकियों का जिक्र करते हैं, मुत्तकियों का बेहतरीन बदला, जन्नत की नियामतें बयान की गई, क्योंकि उसने यानी उस मुत्तकी ने जो यानी ईमान लाया था ना, जो ईमान लाया और अपने आप को तख्वा परहेजगारी में रखा, और उसका मामला क्या था, अहम बात यहाँ पर नोट करिए, आयत नंबर 21 यानी अल्लाह ताला मुत्तकियों का ठिकाने का जिक्र करते हुए उसका जिक्र करते हैं, उस नेक बंदे का, जो बंदा जिसने क्या किया, अपने अपने आप को अल्लाह के पास गिरवी रख दिया। गिरवी समझते ना, रहन, क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला, कुल्लु मरिम बिमा कसब रहीन। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 21 नोट करिए, क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, न हर हर इंसान अपने अमल के बदले में रहन है अल्लाह के पास। क्या बोल रहे हैं, जो लोग ईमान लाए और उनके औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की, हम उनके औलाद को उन तक पहुंचा देंगे, ये भी जन्नत की नियामत है। जो बंदा नेक अमल करता है और उनकी औलाद भी उनकी पैरवी करती है, तो अल्लाह ताला बाप को, बच्चों को, माँ को, बच्चों को, यानी सारे खानदान को जन्नत में एक जगह जमा कर देंगे। और किसी के कम भी होंगे दर्जे, तो वो जो ऊंचे दर्जे में जो बैठे होंगे उन तक उनको पहुंचा देंगे। सुभान अल्लाह, कितना फायदा है देखिए घरों का, नेक होने का, खानदान के नेक होने का। और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनके अमल से हम कुछ भी कम ना करेंगे, हर शख्स अपने अपने अमाल के बदले गिरवी है। ये आयत नंबर 21 थी, बहुत अहम है, नोट करिए, अल्लाह ताला के पास हम गिरवी है। गिरवी समझते ना, गिरवी यानी हम रख अपने अपने नफ्सों को, अपने आप को, अपने अमाल को हम अल्लाह के सामने गिरवी रखते हैं, क्यों, जन्नत पाने के लिए। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि जिसको जन्नत मिली वो लोग हैं जो ईमान, अपने अमाल को अल्लाह के पास गिरवी रखते थे, कंटिन्यू जो भी अमल करते वो अपनी नफ्स की मनमानी नहीं करते, बल्कि क्या करते, जो अल्लाह ताला बोला उसको सुनते हैं। आगे मुत्तकियों के लिए इनाम का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, उनके इर्द गिर्द उनके नौ उम्र गुलाम चल फिर रहे होंगे, यानी नौ उम्र गुलामों को अल्लाह ताला जन्नत में रखेगा, इतने सारे ऐसे फिरते होंगे वो, गोया मोती है जो ढके रखे थे। सुभान अल्लाह। और आपस में एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होकर जन्नती बातचीत करेंगे और कहेंगे, देखो इससे पहले हम अपने घर वालों में बहुत डरा करते थे ना, वो डरना हमें काम आया। यानी जब हम घर वालों में एक दूसरे के साथ रहते थे दुनिया में, जब हम क्या करते थे, डरते थे ना अल्लाह से, डर के नेक अमल करे थे ना, सुभान अल्लाह, तो ये काम आया, देखिए आज जन्नत, हम जन्नत में हम पहुंच गए। वो बात बात करेंगे बैठकर अल्लाह अकबर, और वो बोलेंगे अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ हम पर, अल्लाह ने बड़ी तेज और तुंग गर्म हवाओं से, अजाब से, जहन्नम से हमें बचा लिया। अल्लाह हम सब की फैमिलीज को अल्लाह ताला वो मौका नसीब करे, आमीन या रब, कि हम बैठ कर जन्नत में ऐसी बात करें जिस जन्नत के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, कि जन्नती खानदान वाले एक दूसरे से बैठ कर बात करके बोलेंगे कि देखो हम दुनिया में अल्लाह से डरते थे ना, आज कैसे हम यहाँ पर बच कर आ गए, अल्लाह ने इनाम किया, एहसान किया हम पर, जहन्नम से बचा लिया। आयत नंबर 26, 27, 28 है, इसको याद रखिए बहनों, और ऐसे अमल करिए अपने अपने साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने खानदान के साथ, ताकि वहां हमें बैठकर ये बात बोलने का मौका मिले। आमीन या रब। आगे 29 से आखिर तक, सूरह तूर की आयत नंबर 29 से आखिर तक अल्लाह की तौहीद और नबी की रिसालत और उसका इस्बात करते हुए नबी को सब्र की اور تلقین کی گئی, اللہ نے صبر کی تلقین کی اور تسبیح پڑھنے کا حکم دیا. آیت نمبر 29 سے آخر تک. اور یہ تھی بہنوں سورۃ الطور. اس میں میں پھر سے بتا رہی, دیکھیں آیت نمبر 29 سے آخر تک کنٹینیو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کی, نبی کی رسالت کا اثبات کرتے ہوئے نبی کو صبر کرنے کی تلقین دی اور تسبیح پڑھنے کا حکم دیا اور صبر کا حکم دیا. تو یہ جو چیزیں ہیں, پچھلے بھی یہ باتیں آئی تھیں, اللہ تعالیٰ نے بار بار جو بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. یہ سورۃ الطور تھی. آگے سورۃ النجم ہے, اور سورۃ النجم مکیہ ہے, مکے میں نازل ہوئی, اور اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا. سورۃ النجم مکیہ ہے, نجم شروع ہو رہی. دیکھیے ابتدائی 18 آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام کو دیکھنے اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کا ذکر ہے. پہلی 18 آیات میں سورۃ النجم کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام کو دیکھنا اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کا ذکر ہے. کیا فرماتے اللہ تعالیٰ, والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گرے. دیکھیے اللہ 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 حق رکھتا ہے کسی بھی چیز کی قسم کھائے. پھر بار بار یہ بات یاد دلا رہی ہوں میں تاکہ آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھیں, غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے. بندے کو اجازت نہیں دی, اللہ نے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے, نہیں کھانا. قرآن کی قسم, سر کی قسم, ان کی قسم, نہیں. اللہ تعالیٰ صرف اس کی قسم کی اجازت دیتے ہیں. ہاں اللہ کو حق ہے, اللہ کسی بھی قسم کھاتا ہے. جیسے قرآن میں دیکھیے آپ, اللہ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی, یہاں پر اللہ تعالیٰ نجم کی قسم یعنی ستارے کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا ساتھی نہ دیوانہ ہے نہ راہ گم ہے, نہ وہ تیرے راستے پر ہے, نہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتا ہے, وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے. کیا بولے اللہ تعالیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے کچھ بھی, وہی بولتے جو ان کے طرف وحی کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جو بولے وہ منعن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی, اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے تھے وہ. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسے بھرپور طاقت والے فرشتے نے سکھایا, یعنی جبریل علیہ السلام نے, جو زور آور ہے. وہ پھر سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں. اور یہ کب تھا؟ سیکنڈ وحی جب نازل ہوئی تھی اس وقت, یعنی نیا نیا جب وحی نازل ہو رہی تھی اس وقت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا. ان کے 600 پر تھے خوبصورت, تو وہ دیکھنا. پھر سدرۃ المنتہا میں ایک مرتبہ دیکھا تھا معراج کے وقت میں, دو مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی حالت پر دیکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ وحی بیان کر رہے ہیں, یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ سیدھا کھڑا ہوا وہ فرشتہ, اور وہ بلند آسمانوں کے کناروں پر تھا, پھر وہ نزدیک ہوا اور اتر آیا. یعنی دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل علیہ السلام اوپر سے آسمان سے اتر کے نیچے آتے ہیں, بس وہ دو کمانوں کے بقدر فاصلے پر رہ گیا. یعنی دو کمان کا فاصلہ کتنا تھوڑا ہوتا نا, اتنا نزدیک آ گئے تھے جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, بلکہ اس سے بھی کم بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی نزدیک آ کے آپ کو وحی دیے تھے, مطلب ڈرے ہوئے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نیا نیا وحی جب نازل ہو رہی تھی. آپ دیکھیے سورہ مدثر میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ڈرو نہیں ہے محمد, اٹھو. ہوتا نا بھائی ڈرو گے کہ مطلب اچانک ایک شخص آ گیا, آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ آپ نبی بنائے جا رہے ہیں, آپ پر فرشتے نازل ہوں گے اور اللہ کا احکام دیں گے, آپ کو نہیں پتا تھا, اچانک ہوئی نا یہ چیز. تو حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گیا اور آ کر کہا کہ خدیجہ مجھے اڑا دو, تو کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, اپنی جان کا ڈر ہے. تو بہرحال آگے آئیں گے, وہ آیتیں میں سمجھاؤں گی انشاءاللہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ فرشتہ نزدیک آ گیا اور اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی, جو بھی پہنچائی, دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا. اب یہ باتیں جو پیغمبر بتاتے تھے نا کہ دیکھو میں دیکھا فرشتے کو, آیا تھا فرشتہ وحی دیا, تو پھر کفار مشرکین مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا. کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس بات پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا. یعنی کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے تو دو مرتبہ دیکھا جبریل علیہ السلام کو, ایک یہ مرتبہ, دوسری مرتبہ بتا رہے ہیں, اسے تو ایک اور مرتبہ بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. بہرحال رب کی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آگے آیت نمبر 19 سے 30 تک اللہ تعالیٰ بتوں کی پوجا کو کھلی گمراہی اور ضلالت بتایا ہے. پچھلے بھی پڑھے تھے ہم اللہ تعالیٰ کیسے تنبیہ کرتا ہے بتوں کی پوجا کرنے والے کو, اور یہاں پر بھی اللہ نے کہا تم نے لات اور عزا کو, منات کو ये घटिया ये तमाम उनको जो है ना मतलब माबूद बना रखा है, अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये तुम्हारे बाप दादा रख लिए थे दलील नहीं थी, तो क्या तुम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाओगे? अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं उनसे, और ये खुली गुमराही है बताए अल्लाह ताला। आयत नंबर 19 से 30 तक अल्लाह ताला ने, 19 से 30 तक अल्लाह ताला ने उन बुतों की पूजा को खुली गुमराही और जलालत बताया। आगे आयत नंबर 31 और 32 में गुनाहगार और नेक लोगों का अंजाम अल्लाह ताला बता, यानी पहले तो आयत नंबर बताई ना मैं आपको, 19 से 30 तक अल्लाह ने जो शिर्क की मजम्मत की उसमें बताते हैं, आयत नंबर 29 नोट करिए, आयत नंबर 29 उसमें बताते हैं अल्लाह ताला, तो आप उनसे मुंह मोड़ लें, मुशरिकीन जो हरकतें कर रहे हैं आप उनसे मुंह मोड़ लें, जो हमारी याद से, जो हमारी याद से मुंह मोड़ा और जिनका इरादे इरादा सिर्फ दुनिया की जिंदगी है और कुछ ना हो, उनसे आप मुंह मोड़ लें अल्लाह के रसूल। अल्लाहु अकबर, नोट करने वाली बात है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला बता रही नबी को हुक्म दे रहे उनसे मुंह मोड़ लो जो दुनिया की जिंदगी में ही मगन है, उनको दुनिया की जिंदगी छोड़ा कुछ भी नहीं होना, अल्लाह की याद से मुंह मोड़ लिए, तो ऐ नबी तुम भी इनसे मुंह मोड़ लो बोल रहे। और आज कई ऐसी बहनें हैं, कई ऐसे लोग हैं नऊजुबिल्ला जो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं कि ये लोग नऊजुबिल्ला अल्लाह ताला की याद से मुंह मोड़ लेते हैं और दुनिया की जिंदगी में खोए हुए हैं, और ये समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सिफारिश करके बचा देंगे। यहाँ साफ आए थे, देखिए आयत नंबर 29, हुक्म हो रहा है अल्लाह ताला का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इनसे भी मुंह मोड़ लो जो अल्लाह की याद से मुंह मोड़ बैठे हैं। आगे बहनों आयत नंबर 31 और 32 में गुनाहगार और नेक लोगों का अंजाम अल्लाह ताला बताता है। गुनाहगार का क्या अंजाम होगा, नेक लोगों का क्या सिला मिलेगा? उसके बाद आयत नंबर 33 में आता है कि अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि आपने उसे देखा जिसने मुंह मोड़ लिया और बहुत कम दिया और हाथ रोक लिया। अभी बताई ना मैं कि जो मुंह मोड़ लेता है तो अल्लाह ताला हुक्म दे रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पलट जाओ उससे भी, तो वो कौन है शख्स, और उसका डेफिनेशन दे रहे हैं, वो शख्स कैसा है जिसने मुंह मोड़ लिया, बहुत कम अल्लाह की राह में देता है और उसे रोक लेता है, अपने हाथ को रोक लेता है, खुल के नहीं देता अल्लाह की राह में, तो क्या उसे इल्म है कि वो सब कुछ अल्लाह सब कुछ दे रहा है? अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि उसको इल्म नहीं है कि अल्लाह उसको देख रहा है, और ये कि हर इंसान के लिए उस वही है जिसकी इसने कोशिश की है। अल्लाह अकबर, क्या बोल रहे अल्लाह ताला, हर इंसान के लिए वही चीज है जिसकी इसने कोशिश की है, और ये कि बेशक उसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी। है ना, बंदा जो कोशिश कर रहा है वो खुद के लिए कर रहा है, जो भी कोशिश कर रहा है आगे देख लेगा उसने क्या किया था। अल्लाह ताला बता रहे हैं अल्लाह वही है जो हंसाता है, वही है जो रुलाता है। आगे अल्लाह ताला यानी सूरह नजम की आखिरी आयतों में अल्लाह ताला फरमा रही कि बस ए इंसान तू अपने रब की किस किस नियामत में झगड़ेगा, अल्लाह ने तो इतनी नियामतें तुझको दे रखी है, किस किस नियामत में झगड़ेगा? ये नबी डराने वाले हैं पहले डराने वालों में से, खयामत नजदीक आ गई, अल्लाह के सिवा उसका वक्त मुअय्यन दिखाने वाला कोई नहीं है, बस क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो और हंस रहे हो, रोते नहीं बल्कि तुम खेल रहे हो, अब अल्लाह के सामने सजदा करो, उसी की इबादत करो। सुभान अल्लाह, ये आयतें जब नाजिल हुई बहनों, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सजदा किए तो कुफार भी बेसाख्ता सजदे में गिर पड़े और बाद में पशेमान हुए कि अरे हम क्यों सजदा कर लिए। बात ही ऐसी है ना, बात ही ऐसी, आयत नंबर 55 से देखिए, 55 से 62 तक, ये सूरह आखिर की जो आयतें हैं, क्या फरमाए इसमें अल्लाह ताला, ऐसी बातें हैं उसमें कि सुभान अल्लाह, वाकईतन दिल झुक जाता है। अल्लाह ताला बता रही कि तुम क्यों झगड़े कर रही, क्यों अपनी रहमत रब की नियामत को झुठला रही, ये नबी जो डराने वाला है पहले भी, ये नबी जो डराने वाले हैं पहले डराने वालों में से हैं, और खयामत नजदीक आ गई है, अल्लाह के सिवा उसका वक्त कोई नहीं जानता, इस बात पे तुम ताज्जुब कर रहे हो, हंसते हो, रोते नहीं, अल्लाह अकबर, तुम खेल रहे हो, अब अल्लाह के सामने सजदा करो और उसकी इबादत करो। ये थी बहनों सूरतुन नज्म,